शांति, ओम शांति। प्यार से बोलिए, खुशी से शिव बाबा के याद में ओम शांति बोलिए। जब हम खुशी से, प्यार से, शिव बाबा के याद से कोई भी बोल बोलते हैं, कितना ताकत बढ़ जाता है। अनुभव है ना, कर रहे ना तीन दिनों से। इसलिए तीनों बातें मिलाकर आप ओम शांति जब कहते हो, मन में आनंद का अनुभव होता है। आज का जो विषय है ज्ञान मुरली, उसे सुनने हैं तो आप सब महान आत्माएं इस डायमंड हॉल में विराजमान हो, आप सभी लकी और रियल डायमंड्स का डायमंड हॉल में स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत। अभी भी ऐसे ही ताली बजा रहे, खुशी नहीं हो रही है? जरा खुशी से बजाओ, खुशी से यानी मुस्कुराते हुए। जो स्वयं भगवान ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहला पाठ सिखाया, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, कैसे करो, खुशी से, प्यार से, मुस्कुराते हुए करते रहोगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। ये ज्ञान मुरली में भगवान ने बताया। आज से ज्ञान मुरली में जो बाबा ने सिखाया है, सदा खुश रह के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करनी है। आप सबको पसंद है? सबको पसंद है? हाथ उठाए जिन जिन को पसंद हो। तो अगर आप इस बात को जीवन में धारणा करेंगे तो आप कोई भी परिस्थिति हो, सर्कमस्टेंस हो, उसे सामना करने की शक्ति आप में आ जाएगी। इस शरीर का नाम गीता बहन है, पहले से परिचित है आप। 25 वर्षों से मधुबन, जहां पर आप कल घूम के आए हो, हेडक्वार्टर्स में सेवा करने का मुझ आत्मा का सौभाग्य रहा। आज उससे भी डबल खुशी की बात है कि आप सभी महान आत्माओं से मुलाकात हो रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और खास करके ज्ञान मुरली इस विषय पर संबोधन करने हेतु हमारे ये क्या कहे, सौभाग्य कहे कि ज्ञान मुरली स्वयं भगवान ने हम जीवात्माओं के प्रति जो महावाक्य उच्चारित किए, उन सत्य ज्ञान रूपी महावाक्यों को ज्ञान मुरली कहा जाता है। हम अपने अनुभव के आधार से बता रहे हैं, जब से हमने हर रोज ज्ञान मुरली को सुनना प्रारंभ किया, तब से कभी भी दुख का अनुभव नहीं हुआ, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए। आप भी अगर हर रोज ज्ञान मुरली का श्रवण करेंगे, क्यों, तो क्या होगा? एक तो कभी दुख नहीं होगा आपको, ऐसा नहीं है कोई परिस्थिति आएगी नहीं, लेकिन सब कुछ करते हुए, सर्कमस्टेंस के बीच में रहते हुए कमल पुष्प जीवन का अनुभव कर सकते हो, लोटस लाइक लाइफ। कमल पुष्प कहाँ रहता है? कीचड़ में। कीचड़ में रहते भी कीचड़ से न्यारा। इस तरह संसार में रहते, बहुत सारे टेंशन्स के बीच में रहते, कमल पुष्प के समान हमारा जीवन बन सकता है जब हम हर रोज ज्ञान मुरली का श्रवण करेंगे। तब कई बार आपने योग लगाते हुए महसूस किया होगा, वैसे तो बहुत अच्छा है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन योग थोड़ा सा मुश्किल है। आप में से ऐसा कोई है यहाँ पे जो ऐसा फील करते हो तो हाथ उठाए, देखिए, है ना? तो स्वयं भगवान ने योग को और सहज करने हेतु ज्ञान मुरली के द्वारा हर बात बताई है, इसलिए हम भगवान को ज्ञान मुरली के द्वारा उनके वास्तविक रूप में पहचान कर सकते हैं। इसलिए जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, कैसे मिलन होता है। ज्ञान मुरली हम जीवात्माओं का संपर्क परमात्मा से कराती है। आपने जितने लेसन सुने, चाहे आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, सृष्टि चक्र से संबंधित, कर्मों से संबंधित, जितने भी आपने लेसन सुने, क्या अनुभव किया? तन और मन कैसा झूम रहा था, इतना आनंद का अनुभव आप करते थे कि कभी बाहर जाना है, अभी भोजन करने जाना है, जब तक आपको ओम शांति और गीत ना बज जाए तब तक पता भी नहीं होता था। आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया ना। आत्मा से संबंधित जो बातें बाबा ने मुरली में बताई, उसे आत्मा के लेसन के रूप में बहनों ने आपके समक्ष रखा। परमात्मा से संबंधित जो बातें स्वयं भगवान ने ज्ञान मुरली के द्वारा बताया, परमात्मा के लेसन के रूप में आपके समक्ष रखा गया। जितने भी आपने क्लासेस सुने, ज्ञान मुरली से लिया गया। ज्ञान मुरली है सोर्स, जिसके आधार से आपने महसूस किया कैसे बहुत आनंद का अनुभव होता जा रहा है, और भी सीखे, और भी अनुभव करे, ऐसा दिल होता है। आप सबका हो रहा है ना, और भी सीखे, हर रोज अध्ययन करें। तो इन ज्ञान मुरलियों में वो ताकत है जो मन को आनंदित कर देता है, प्रफुल्लित कर लेता है। जैसे हम मुरली सुनते हैं बांसुरी की, जब हम म्यूजिक सुनते हैं, फ्लूट म्यूजिक सुनते हैं, तो अच्छा लगता है, मन में ताजगी का अनुभव होता है। ज्ञान मुरली स्वयं परमात्मा के द्वारा उच्चारित किए गए वो संगीत है, वो म्यूजिक है, जो अपने आप में अंदर आनंद रस का अनुभव होने लगता है। वो संगीत है ज्ञान मुरली, जिसे अंतर मन के तार इस प्रकार जंकृत हो जाते हैं, अनेक जन्मों तक सुख शांति का गीत आपके जीवन में बजता रहेगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको हर रोज ज्ञान मुरली सुनना है। परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ये वर्षा है ज्ञान मुरली। परम शिक्षक के द्वारा दिया गया पढ़ाई है, परम सतगुरु के द्वारा दिया गया ये श्रीमत है। जब हम ज्ञान मुरली को सुनने लगते हैं तो हमारे अंदर मन को ऊर्जा मिलने लग जाता है। जैसे सूर्य इस धरती के लिए ऊर्जा का अनंत स्रोत है, इसी तरह ज्ञान सूर्य परमात्मा हम सभी आत्माओं के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक स्रोत का अनंत आधार ज्ञान मुरली है, जिससे मन और बुद्धि आत्मा रूपी बैटरी संपूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है। चार्ज होने से और भी खुशी का अनुभव होता है। और वैसे भी आप सबको एक खुश खबरी सुनाते हैं, सुनाएं? पहले अगर आप खुशी से मुस्कुराते हुए सुनेंगे तो सुना देंगे। वैसे तो आप सबको सौगात मिली है, तो आज ऐसा सौभाग्य का दिन है। ज्ञान मुरली के द्वारा भगवान की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सब ऐसी प्रॉपर्टी, दुनिया में प्रॉपर्टी के लिए कितना झगड़ा होता है, देने वाला थक जाता है कितना दूं, लेकिन यहां देने वाला अनंत देता है। शांति का सागर है, आप चाहे तो अपने जीवन को 100% शांतिमय बना सकते हो। उतना प्रॉपर्टी, ज्ञान सुख आनंद अविनाशी खजानों की प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है ज्ञान मुरली के द्वारा। इसीलिए क्या कहा गया, ज्ञान मुरली है स्वर्ग यानी सतयुग में जाने का पासपोर्ट, जिससे मिलेगा वो है, पासपोर्ट तो चाहिए क्योंकि दूसरी दुनिया में जाना है, विदेश में जाना हो तो पासपोर्ट के बिना, वीजा के बिना नहीं जा सकते। तो इसी तरह ज्ञान मुरली के द्वारा स्वयं भगवान हमें पासपोर्ट देने आए हैं, जिसमें क्या हो, कब मिलेगा ये पासपोर्ट और वीजा, जब हम सतयुग में जाने के लिए लायक बन जाए, कब बनेंगे, क्या प्लान बनाया है, आगे और प्लान है या आज से हम दृढ़ कर लें, नहीं पासपोर्ट लेने के लिए हम सब कुछ करें। आप में से कोई बताएं, ऐसी कौन सी बात है जिसमें सदा काल के लिए हम सुखी रह सकते हैं, सदा काल के लिए हम शांतिमय रह सकते हैं, ऐसा खुशनुमा जीवन बनाने के लिए स्वयं भगवान ने ज्ञान मुरली के द्वारा ये सीक्रेट बताया। आप सब तो वो सीक्रेट सुन चुके हो, फिर से आपको पूछ रहे हैं, आप में से कोई है जो बता सकते हैं कौन सा ऐसा सीक्रेट? स्वयं भगवान ने कहा कि सदा आप खुश रह सकते हो। जानते हैं, जो जानते हैं हाथ उठाए, जानते हैं ना, तो एक खड़े होकर बताए कुछ, ठीक है जो भी आपने बताया, क्या बताया पता नहीं चला, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो पता चलेगा, सुनना है, सुनना और सुनाना है, ठीक। और अपने आप को पहचानना है वो भी ठीक है, तो आप जो भी कह रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूल बात क्या है, थोड़ा सा हम ध्यान दें इस पर, कब हम ऐसा जीवन अनुभव कर सकते हैं? अगर हम ऐसा जीवन अनुभव करना चाहते हैं तो हम अपने समय को कहां पर व्यतीत कर रहे हैं? दिन में 8 घंटे के समय को 7 घंटा 6 घंटा समझ लो, कहां पर हम व्यतीत करते हैं? कहां पर? 6 घंटा 7 घंटा अभी मुस्कुरा रहे हो आप, हा? कहां व्यतीत करते हैं? नौकरी में जाना है, पैसा कमाना है, वो तो कमाना है, ऐसा नहीं है नहीं कमाना है। तो क्यों हम व्यतीत करते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं जितना धन हम अपने पास जमा करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी, तभी तो जा रहे हो, नहीं तो 7-8 घंटा हम क्यों जाए वहां? आप सोचो, स्थूल धन प्राप्त करने के लिए भी कितना समय देना पड़ता है? 25 साल स्टडी करो, नौकरी करो, उसके बाद धन मिलेगा, वो भी कितना घंटा काम करना है? पूरा दिन। अब हमने दौड़ते दौड़ते जिंदगी में समझ लिया धन से ही खुशी मिलेगी, इसलिए धन जमा करो। तो अब सोचने की बात है, जिनके पास धन है क्या वो बहुत खुश है? 100% खुश नहीं है या है? नहीं है भाई जी, ऐसे ऐसे कर रहे, माना नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? धन खुशी और शांति नहीं देती है। क्या देती है फिर? सुविधाएं देती है, कंफर्ट देती है। बैठने के लिए एक बहुत अच्छे सोफे पर आप बैठ सकते हो, ऐसी फर्नीचर आप खरीद कर सकते हो, और अच्छी बंगलो भी खरीद कर सकते हो, मर्सिडीज गाड़ी भी ले सकते हो, लेकिन ये सब होने के बावजूद मुझे क्या चाहिए? क्या वो है? अगर नहीं है तो कहां से मिलेगा? वो सीक्रेट परमात्मा ने बताया। तो वो सीक्रेट क्या है? जैसे समझ लीजिए, घर में कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पैसा तो है, बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस है इतना, ऐसा स्मृति में आ जाने से खुशी मिलेगी? मेरे पास 10 लाख पड़ा है बैंक अकाउंट में, क्या सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा चलो, जब भी हम फ्री होते हैं, खुशी में रहना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? चलो होटल में जाकर खाना खा लो, रेस्टोरेंट में टाइम देते हैं ना, टाइम कहाँ देते हैं आजकल? मनी इज नॉट मनी, टाइम इज मनी, समय कहाँ जा रहा है? तो जब भी हम फ्री होते हैं कहाँ टाइम देते हैं? चलो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा के आते हैं। अच्छा चलो, किसी ने बताया, वैसे तो टाइम नहीं है कहते, किसी ने कहा ये बहुत अच्छी मूवी है, जाना ही चाहिए, तो कैसे भी समय निकल आएगा उसमें तो जाएंगे जरूर। तो उस सिचुएशन में क्या कोई मूवी में जाने से या होटल में जाने से हमें सेल्वेशन मिलेगा? तो ये सारी चीजें मुझे सुख और शांति नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें समय नहीं देना है, देना है। अगर हम 7 घंटा इन स्थूल चीजों को इकट्ठा करने के लिए देते हैं, तो कम से कम 1 घंटा मुझे क्या चाहिए? सुख और शांति, उसके लिए तो जरूर देना होगा। जैसे आप कोई गाड़ी में बैठे हो, पता तो करना होगा ये गाड़ी कहां पर जाएगी, अगर ऐसे ही बैठ गए तो कोई दूसरे स्थान पर पहुंच जाओगे। इस तरह मुझे जीवन में क्या चाहिए? सुख और शांति। तो कम से कम 1 घंटा तो उसके लिए निकाले। तो स्वयं भगवान ने रहस्य बताया, सुख शांति कैसे बढ़ेगी? ज्ञान मुरली में परमात्मा ने हर चीज को स्पष्ट किया। एक बार एक मतलब इनविटेशन हमें मिला उनके घर में जाने का, तो जब हम उनके घर में पहुंचे तो आपस में जो हस्बैंड एंड वाइफ थे आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो जब हम पहुंचे तो बोला, बहुत अच्छा बहन जी आप आ गए। मैंने कहा, सही टाइम पर आ गए। मैंने बोला, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा, देखिए हमारे बीच ऐसी बात हुई, मैं कल जब घर में था, पति ने कहा, मैंने अपने पत्नी से कहा था, ये जो अलमारी तुमने रखा है ना, कहाँ रखा है? रूम में रख दिया, जिसमें जगह कम पड़ रही है, तो सारे दिन में टाइम निकाल करके इसे शिफ्ट कर देना। तो अच्छा ठीक है, मैं तो कहकर चला गया। लेकिन जब मैं शाम को आया तो देखा कि जो काम बताया गया था वो नहीं हुआ, तो मैं चुपचाप खाना खाके सो गए। तो पत्नी को नॉर्मल लगी या अबनॉर्मल लगी? क्या बात है, रोज बातें करते हैं, भोजन पर आते हैं तो भी नॉन स्टॉप बातें करते हैं, आज तो एकदम साइलेंस में है, अब ये शांति नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? समझ गए ना, अभी तो मुस्कुरा रहे सभी है? तो क्या हुआ कि पत्नी को नींद ही ना आए। अरे क्या हो गया, आज तो ये बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खाना खा के सो गए, नहीं तो रोज बोलते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बोलते ही रहते हैं। तो रात को उनको नींद नहीं आया, 12-1 बज गया, फिर उनको याद आया शायद ये हो सकता है कि मैंने जो करना था वो भूल गई, इन्होंने बताया था ना अलमारी शिफ्ट कर दो, इसलिए शायद नाराज है। याद आ गया कब? रात को 12-1 बज। तो उन्होंने क्या सोचा मन में, चलो मैं शिफ्ट कर दूं, क्यों उठाना है, कम से कम सुबह उठकर मेरी महिमा तो करेंगे, अच्छा रात को कितना अच्छा काम हो गया, खुश तो हो जाएंगे। इस भावना से उन्होंने अपने आप उस अलमारी को वहां पे शिफ्ट कर दिया। तो जब पति सुबह उठे तो उनके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे, अच्छा चलो अलमारी शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, रात को तो अलमारी यहीं पर था। पहला ही क्वेश्चन सवाल पूछा तो पत्नी नाराज हो गई, बोलो ये भी नहीं, मेरे अप्रिशिएशन भी नहीं करते हैं, तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, तो रात को तो यहीं पर था अभी कहाँ गया? तो बोला कि मैंने रात ही रात शिफ्ट कर दिया। तो बोला अगर आपको कुछ हो जाता, बस इस पर हम दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कौन राइट है आप बताइए, आप में से जो कहते हैं अच्छा पत्नी राइट है वो हाथ उठाए, अच्छा 2-3 है, अच्छा जो कहते नहीं पति राइट है वो हाथ उठाए, अच्छा कुछ लोग हैं। तो उन्होंने हमको पूछा आप बताओ कौन राइट है, तो हमने जो हर रोज ज्ञान मुरली का अध्ययन किया था, परमात्मा ने मुरली में सिखाया कि बच्चे हमेशा एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, तो हमने उनको बताया आप दोनों ही राइट हो, ये मुझे याद भी आ गया और मैंने उनको बताया। मैंने कहा जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है अपने आप को राइट समझता है ना, अगर आप पूछेंगे तो उनके पास 10 बातें होंगी जस्टिफिकेशन देने के लिए, तो इस तरह जब भी कोई व्यक्ति बात करता है वो अपने आप को राइट ही समझते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं हम कैसे बात करते हैं, चलो ये हमेशा ऐसे ही करता रहता है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा समझ लिया तो कौन सा एनर्जी भेज दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव भेज दिया। फिर हम उनके साथ अच्छी बातें करना चाहते हैं, नहीं नहीं आप ऐसा थोड़ा सा शांति से बोलते पूछते, कम से कम मुझे अप्रिशिएट करते, पहले कैसे सोचेंगे, सोचेंगे कैसा, जैसे हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं क्या कहते हैं, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, फिर अंदर क्या सोचते, भी बड़ा शैतान है, रोज 1-2 घंटा ले लेता है मेरा, समझ लो ऐसा सोच लिया तो बच्चे में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि थॉट एनर्जी जो है, जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन पहुंचता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है साउंड एनर्जी, यानी हम जो बोलते हैं वो तो दूसरों को सुनाई दे रहा है, हम सोचते हैं वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए हम क्या सोचते हैं, ठीक है कैसा भी सोचो बोलो अच्छा, तो हमारे बोल पर हमारा ध्यान है लेकिन सोचने पर ध्यान नहीं है। तो परमात्मा ने ये रहस्य बताया कि गुणों को धारण करो, जैसे रेस्पेक्ट का गुण आ गया घर में तो क्या हो गया, घर क्या बन गया, घर में एक आर्ग्यूमेंट होगा, नहीं होगा। फिर घर में कभी झगड़ा भी नहीं होगा, ना आर्ग्यूमेंट होगा ना झगड़ा होगा। क्यों? एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट करने लग गए। तो एक गुण शांति बढ़ा रहा है या नहीं? ये तो एक मिसाल के तौर पर एक गुण के बारे में हमने बताया, दे रहा है ना एक गुण। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया? जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने से क्या बनेंगे? डॉक्टर। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने से इंजीनियर बनेंगे। तो आप सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो क्या बनने? मनुष्य से देवता, नर बनेगा नारायण, नारी बनेगी श्री लक्ष्मी, यानी सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न। एक गुण अगर घर में शांति ला सकता है तो सोचो अगर आपके अंदर सब गुण आ जाए, सर्व शक्तियां आ जाए। जहां चुप रहना है वहां बोलते रहते हैं, जहां बोलना है वहां चुप रहते हैं, माना क्या कर रहे हैं? जहां सहन शक्ति का प्रयोग करना है वहां हम सामना कर रहे हैं, सामना करने की शक्ति का प्रयोग जहां करना है वहां हम सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है कौन से टाइम पर कब क्या करना है। समझ लो सहन करना है, ज्यादा ही ब्रेक लगा दिया, ज्यादा सहन करने चल पड़े तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन हो जाएगा। या ज्यादा ही सामना करेंगे, एग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीमारियां आ जाएगी, हार्ट अटैक की। तो माना कौन से शक्ति का प्रयोग कब करना है? सारे विश्व में एकमात्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहां से आपको ये ट्रेनिंग मिलती है कैसे हम अपने जीवन को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाए, जिससे हम अपने जीवन में सदा सुखी, सदा शांत रह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी में आए हैं जिसमें स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। आए हो ना ऐसे यूनिवर्सिटी में? तो आप में से जो कहते अच्छा हम ऐसा बनेंगे, नारी जैसी, नारी बनेगी श्री लक्ष्मी, जो श्री लक्ष्मी जैसा बनना चाहते हैं हाथ उठाओ। अभी भी मुस्कुराते नहीं है, मुस्कुराते हुए हाथ उठाओ जरा। दूसरे कम से कम ताली तो बजा दो। हाँ अच्छा, जो आप में से ऐसे श्री नारायण बनना चाहते वो हाथ उठाइए। अच्छा, तो दूसरे लोग तो समझ ही गए होंगे। क्यों? अगर खुशी से ताली बजाएंगे ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जब खुशी आ जाएगी ना कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, पता है आपको। तो इसलिए क्या करना है? प्यार से, खुशी से हर चीज करना है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं हर चीज करना है। तो सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से हम अपने जीवन को संपन्न बनाएं। इसलिए ज्ञान मुरली में स्वयं परमात्मा ने हमें बताया, ज्ञान मुरली है विश्व शांति का आधार। आज आप देख लीजिए कोई भी सत्ता को, धर्म सत्ता हो, विज्ञान सत्ता हो, राज्य सत्ता हो, अर्थ सत्ता हो, तो आप देखेंगे हर सत्ते में कोई ना कोई आप देख रहे हैं कैसे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस है। धर्म सत्ता को ही ले लीजिए, आज कितने झगड़े चल रहे हैं धर्म के नाम पर, होता है या नहीं होता है? हम हिंदू है, आप मुसलमान है, हम पारसी है, हम सिख है, यहां पर जाति भेद, मत भेद, रंग भेद, आप काले हम गोरे, उस पर भी झगड़े चल रहे हैं। तो परमात्मा ने ज्ञान मुरली में ऐसा रहस्य बताया जिससे धर्म सत्ता में कभी असंतुलन होगा ही नहीं। कौन सा रहस्य बताया? ना आप हिंदू हो, ना आप मुसलमान हो, ना पारसी हो, ना सिख हो, ये तो हुए देह के धर्म। आप तो देह भी नहीं, आत्मा हो, और आत्मा का धर्म शांति है। हर आत्मा का धर्म शांति है, चाहे कोई भी धर्म का हो, हर एक को शांति अच्छी लगती है। अगर धर्म सत्ता में ये बात आ जाए, मैं भी शांत स्वरूप हूं और आप भी शांत स्वरूप हो, तभी कोई झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। 100% शांति आ सकती है अगर हमने इतना भी अपने जीवन में धारण कर लिया, क्योंकि हमने समझ लिया आत्मा का धर्म क्या है। आत्मा का धर्म है शांति। इसलिए हम क्या कहते हैं, जैसे क्लास की शुरुआत होती है ओम शांति कहते हैं, क्लास जब पूरा होता है तब भी ओम शांति कहते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि केवल कहने के लिए कहना है। आजकल कहो गुड मॉर्निंग तो कहते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड हो तो कहे ना गुड मॉर्निंग। कहते ये भी क्या बात है, गुड मॉर्निंग क्यों कहना है। ऐसे ही आप देख लीजिए, जब आप बहुत खुश होते हैं कैसे बात करते हैं, चाहे कोई कैसा भी बोल रहा है नहीं बोल रहा, आप सामने से बोलेंगे कैसे हो, गुड मॉर्निंग। खुश है तब ना, मन खुश है तब। मन अगर ऊर्जा से भरा हुआ है तो आप ऊर्जा से बात करते हैं, अगर मन खुश नहीं है तो हम कैसे बात करते हैं। समझ लो किसी ने आपको काम दिया, मन खुश हो तो कहेंगे कोई बात नहीं आपका भी काम मैं कर दूंगी, मन खुश नहीं है तो मैं ही मरती रहूं, मैं ही काम करती रहूं, आप कुछ नहीं करोगे, बोलते रहोगे, क्यों, मन खुश नहीं है। इस महत्व को हम समझें कि मन बुद्धि हमारी चार्ज रहेगी तो कभी भी अशांति नहीं हो सकती है। तो धर्म सत्ता का जो रहस्य परमात्मा ने ज्ञान मुरली में बताया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति मेरा स्वधर्म है। अब सब महान आत्माएं अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। जो खड़े नहीं हो सकते वो बैठ सकते हैं। अभी अपने स्वधर्म का अभ्यास करें। आज दिन तक जब हम सुबह उठते थे, हे मेरे प्यारे मन, मैं सोचती रही कि जो मेरा नाम और रूप है वही मेरा परिचय है। हे मेरे प्यारे मन, अब मुझे ये ज्ञान मिल चुका है, स्वयं भगवान ने दिव्य बुद्धि प्रदान की है जिससे मैंने अपने आप को जाना है कि क्या सच है। ये जो मेरा नाम रूप है ये तो शरीर का है, क्योंकि जब मैं इस शरीर को छोड़ देती हूँ, हे मेरे प्यारे मन, दिव्य बुद्धि के आधार पर आप अपने मन को समझाइए, ना मैं इन आंखों से देख सकती हूँ, ना मैं इन कानों से सुन सकती हूँ, इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कार्य नहीं कर सकती, इसलिए कहा जाता है डेड बॉडी है, बॉडी डेड हो चुका है। हे मेरे प्यारे मन, अंदर ही अंदर बातें करें, आज मैंने समझ लिया, आज दिन तक मैंने अपने जीवन को शरीर और शरीर से संबंधित बातों में समय व्यतीत करती रही, आज मैं संकल्प करती हूँ मैं अपने लिए, मैं जो हूं जैसी हूं, उस निजी स्वरूप को पहचान कर हर संकल्प करूंगी। शरीर का क्या मूल्य है मैंने जान लिया, जिसे मैं प्यार करती हूं या जो कहते हैं आपसे बहुत प्यार है, जब मैं इस शरीर को छोड़ देती हूं, हे मेरे प्यारे मन, तब मुझे प्यार करने वाले भी इस शरीर को नहीं रखते, मेरे पहने हुए वस्तुओं को रखा जाता है लेकिन मुझे नहीं रखा जाता है। शरीर का मूल्य क्या रहा, आज मैंने जो ईश्वर ने ज्ञान मुरली के द्वारा दिव्य बुद्धि प्राप्त कराई, उस आधार पर मैंने समझ लिया है कि मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूं। आपका मन आपका कहना मान रहा है, आपका मित्र बन चुका है। मन को भी समझ में आ गया कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, और जैसे जैसे कहते जा रहे हो, भ्रुकुटी के मध्य में मैं शांत स्वरूप सितारा चमक रही हूं। ये देह मेरा वस्त्र है, ये देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा मूर्ति विराजमान हूं। जैसे जैसे कहती जा रही हूं, अनुभव करती जा रही हूं, महसूस करते जा रही हूं, मैं देख रही हूं दिव्य बुद्धि के आधार पर कैसे मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रही हूं। मुझ आत्मा की एनर्जी ऊर्जा पूरे शरीर में फैला हुआ है। मैं अपने आप को लाइट के बॉडी में देख रही हूं, महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे इस शरीर से भी ऊपर दिव्य बुद्धि के आधार पर इस पृथ्वी लोक से भी ऊपर, अंतरिक्ष से भी ऊपर, जहां स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है, ये मेरा अपना घर, मुझ आत्मा का घर, मैं पहुंच गई। घर में आकर आराम का अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं अपने पिता से मुलाकात कर रही हूं, परम ज्योति सर्वशक्तिवान, पूरे ब्रह्मांड में अपने सर्वशक्तियों की किरणें फैला रहे हैं। असीम शांति की शक्तियां मैं महसूस कर रही हूं। चारों तरफ स्वर्णिम लाल प्रकाश की इस दुनिया में बहुत गहरी शांति का अनुभव कर रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार का, शांति का फुव्वारा मुझ पर बरस रहा हो। शांति के सागर दिव्य ज्योति परम ज्योति शिव बाबा मुझ पर शांति की किरणें बरसा रहे हैं। मेरे दिल में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी टेंशन है, मैं मेरे पिता को अर्पित कर रही हूं। उस प्यार के फुव्वारे के नीचे, शांति के फुव्वारे के नीचे अपने आप को महसूस करते हुए उस परम धाम से, अंतरिक्ष से भी होते हुए, धीरे धीरे पृथ्वी लोक से भी होते हुए पुनः इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में प्रवेश कर रही हूं। और ऐसा महसूस कर रही हूं जैसे शांति का सागर परम धाम से, शांति का फाउंटेन, शांति का फुव्वारा मुझ पर बरसा रहा है। बहुत सुंदर अनुभव मुझे हो रहा। आज से मैं संकल्प करती हूं हर घंटे में 5 मिनट के लिए ऐसे प्यार के सागर के फुव्वारे के नीचे बैठकर प्यार का अनुभव करते हुए इस कर्म क्षेत्र में हर कर्म करूंगी। इस संकल्प के साथ सभी फुव्वारे के नीचे बैठ जाएं, महसूस करें जैसे शांति का फुव्वारा परम धाम से मुझ पर बरस रही है। महसूस करें और पूरे शरीर में, शरीर के हर सेल में फैल रहा है, एनर्जी का अनुभव मुझे हो रहा है। इस कर्म क्षेत्र पर आज से ऐसा कर्म करूंगी, ये संकल्प करें। आप सब शांत स्वरूप आत्माएं बैठे हो, क्या आपको अच्छा लगा? जिसको बहुत अच्छा अनुभव हुआ हाथ उठाए। सबको हुआ? अगर आप लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा, कभी भी टेंशन नहीं हो सकती आपको। हर घंटे में 5 मिनट मंजूर है? हर घंटे में 5 मिनट। ज्ञान मुरली में भगवान ने रहस्य बताया, चार्ज करो आत्मा रूपी बैटरी को तो क्या हो जाएगा, कब कोई क्या भी दे लेकिन आपको पता होगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हमें गुस्सा इसलिए आता है, वो मुझे डांट रहे इसलिए मुझे गुस्सा आया, वो तो उनको जो देना है वो दे रहे हैं, लेकिन लेना ना लेना तो मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो नहीं भी लूं, हो सकता है ना? वो कब हो सकता है? जब चार्ज्ड हो, जब मन बुद्धि शांति से चार्ज्ड हो, तभी तो हम यूज कर सकते हैं। जो है वही तो हम देते रहते हैं सारा समय। तो धर्म सत्ता में अगर हम ये बात को धारण कर ले, अपने निजी धर्म में स्थित हो जाए, तो विज्ञान सत्ता में हम क्या महसूस करते हैं? इंटरनेट मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया, एक और मनुष्य बहुत प्रगति कर चुका, दूसरी ओर से अपने अंदर भय चिंता टेंशन महसूस कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? फायदा तो है, क्योंकि मनुष्य को यूज करने के लिए काफी सारे साधन मिल गए। लेकिन अभी आजकल हम क्या कहते हैं, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, रोज घर में आते हैं लेकिन हमसे बात नहीं करते, इंटरनेट पर लगे रहते हैं, सारा दिन उनका फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लगा रहता है। क्यों? वहां उनको नई नई बातें मिलती हैं, नई नई फ्रेंड्स मिलते हैं। आपके पास आएंगे तो क्या होगा? एक बार ऐसे परिवार में सभी बैठे थे, सब टीवी देख रहे थे, सडनली माँ को याद आ गया, अरे एक हफ्ते के बाद तो एग्जाम है। तो बच्चे को उन्होंने कहा, एक हफ्ते के बाद तो एग्जाम है, जाके पढ़ो। पहले तो भूल गए थे, तो शांति से सब देख रहे थे। तो जब उन बच्चे को बोला, बच्चे ने कहा मैंने तो प्रिपेयर कर लिया है, अभी मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया। तो मम्मी को क्या कहना था? नहीं नहीं जाके पढ़ो फिर से, मम्मी का तो प्यार है कि अच्छे से पास हो जाए। और साथ में पापा भी बैठे थे, उन्होंने भी कहा नहीं आपको जाकर के पढ़ना चाहिए। तो अब बच्चा छोटा है तो क्या करेगा, जाकर के पढ़ेगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन मिल चुका है, समझ लो वो गया पढ़ने के लिए। लेकिन उसको टीवी देखने का बहुत ही दिल है। फिर कुछ समय के बाद मम्मी चली जाती है किचन में, और कुछ समय के बाद पापा भी बाहर चले जाते हैं, कुछ कॉल आने के कारण बाहर चले जाते हैं। तो बच्चा क्या करेगा अभी, उस पर किसी का ध्यान नहीं है और उसको टीवी भी देखना है, बहुत दिल है, पढ़ाई तो कर चुका है, तो क्या करेगा? सभी का एक ही आंसर है ना, चुपचाप आएगा, देखेगा, मम्मी का भी ध्यान नहीं है पापा का भी ध्यान नहीं है, तो क्या करेगा, चुपचाप टीवी खोलेगा और देखता रहेगा। समझ लो पापा जो बाहर गए, अगर वो आ गए तो दरवाजा भी बच्चा खोलेगा क्योंकि वहीं पर है, और समझ लो दरवाजा खोला और पापा अंदर गए, जो लेना था उनको लिया, जो भी फाइल्स उनको लेने थे वो लिया, और जाते समय जैसा आदत होता है ना, क्या कर रहे थे, तो बच्चा क्या बोलेगा, बोलेगा, मैं टीवी देख रहा था, ऐसा बोलेगा है? मैं बांता जी कह रहे नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। अब बताओ हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? सच। लेकिन जब वो हमसे झूठ बोले हम क्या सोचते हैं? अभी तो छोटा है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। लेकिन बीज तो डाल दिया, और उसके बाद क्या होगा? जब वो बड़ा होकर झूठ बोलेगा तब हम क्या कहेंगे? मैंने तो ऐसा कभी ऐसी पालना नहीं दी, लेकिन आपने बीज तो डाल दिया था। तो झूठ बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। झूठ क्या है? अवगुण है। सच क्या है? गुण है, जिसका मतलब गुण शांति दे रही है ना। और गुणों की धारणा कब होगी? जब हम अपने अंदर शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे तब स्टॉक जमा होगा। तो आज जो विज्ञान सत्ता में क्यों ऐसी परिस्थितियां आ गई है, एक तरफ तो बहुत अच्छा विकास के तौर पर विकास की ओर बढ़ रहा है मनुष्य, दूसरे और इन्हीं कारणों से आज दुखी भी है। समझ लो जब भी आपके बच्चे आए आप नई बातें सुनाओ तो क्या होगा? हर दिन वो आएगा आपके पास, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। क्यों? शांति में बैठकर आप आविष्कार कर सकते हैं ना। जैसे एक साइंटिस्ट भी जब शांति में बैठते हैं तो आविष्कार करते हैं, इसी तरह जब हम शांति में बैठेंगे तो नए नए विचार आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, फिर वो सामने से आएंगे। तो ज्ञान मुरली क्या है? ज्ञान मुरली एकमात्र डायलिंग सॉफ्टवेयर है जिससे सदा आपका योग रूपी इंटरनेट कनेक्शन लगा रहेगा, तो क्या होगा? कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसलिए आत्मा रूपी कंप्यूटर में क्या करना है अभी? एवरीडे एंटीवायरस लोड करना है, तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो आपका जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। राज्य सत्ता की बात ले लीजिए, तो राज्य तो हम सब करना चाहते हैं, सब पर, फैमिली में जितने लोग हैं सब पर। लेकिन क्या मेरा मन मेरा कहना मानता है? आज हम मन के राजा है या मन के गुलाम है? स्वयं का राज्य सत्ता कैसा है? ठीक है, राज्य सत्ता तो तभी ठीक हो सकता है जब हम स्वयं पर राज्य करना सीख लेंगे। समझ लो डॉक्टर ने कहा आपको मीठा नहीं खाना है, आपको मीठा अच्छा नहीं लगता है तो क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बोला नहीं खाना, अगर आपको अच्छा लगता है तो क्या कहेंगे? थोड़ा खा लो, एक टैबलेट ले लो। जीभ कितने इंच का है वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। तो हमें ये सोचना है कि क्या हम अपने मन पर राज कर रहे हैं या मन हमारे ऊपर राज कर रहा है। इसलिए तो आप राजयोग सीखने आए हैं, जिससे क्या बनेंगे? मन का राजा, मास्टर ऑफ योर माइंड। तो ज्ञान मुरली में ये सारी नई डायमेंशंस बता जाएगी कैसे हमें अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है। तो राज्य सत्ता को लेकर के आज आपको क्या फील होता है? समझ लो मम्मी पापा सब बैठे हैं घर में, एक ही टीवी है, बच्चा भी बैठा है, और गलती से समझ लो मम्मी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वो रामायण देख रही हैं, उनको वो अच्छा लगता है तो वो देख रही हैं। घर में है एक ही टीवी, अभी बच्चे को कार्टून शो देखना है, पापा को न्यूज देखना है, लेकिन वो नहीं देख पाएंगे। क्यों? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मम्मी के हाथ में। समझ लो डोर बेल बजेगा ना, फिर भी मम्मी जाएगी। आजकल का फैशन कैसा है? रिमोट लेके जाएगी डोर खोलने के लिए। चलो आते आते समझ लो कुकर की सीटी बजी, किचन में भी जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी? रिमोट कंट्रोल लेते हुए। नहीं तो क्या होगा? रामायण के बदले न्यूज देखना पड़ेगा या तो कार्टून नेटवर्क देखना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे मन का रिमोट कंट्रोल कहाँ है, हमारे पास या दूसरे के पास? चाहे कोई कुछ भी बोल दे तो हम मूड ऑफ कर लें। तो राज्य सत्ता में क्या हो? स्वराज्य। जब स्वराज्य का गुण आ जाएगा, मन पर राज करने का गुण आ जाएगा, तो हमारी अर्थ सत्ता भी ठीक हो सकती है। समझ लो आप बिजनेस करने गए हो, तो वहां पर भी आप देखिए, आपका खुद का शॉप है, घर में कुछ हो गया, झगड़ा चल रहा है और आप गए बिजनेस करने, तो एक व्यक्ति आता है, आप उसे दिखाते हैं जो भी आपके शॉप में है, और वो कुछ नहीं लेता है और चला जाता है और आपकी बातें फोन पर चल ही रही है। समझ लो एक घंटे के बाद फिर वो आता है, फिर अभी भी आप अपसेट हैं, बातें हो रही है घर में, कोई टेंशन है। अब वो फिर से पूछता है, दिखाना आप क्या क्या है आपके पास, वो पहले देख कर गया है, फिर वो पूछेगा दिखाना, तो क्या करेंगे, दिखा तो देंगे। तो फिर समझ लो एक घंटे के बाद फिर से वो आया, बोला कि दिखाना मुझे और एक बार देखना है, तो क्या कहेंगे, खुशी से मुस्कुराते हुए शांति से वेलकम करेंगे, चलो आ जाओ कोई बात नहीं, फिर चाहे तो और एक घंटे के बाद फिर से आ जाना, ऐसे बोलोगे है? समझ लो अगर टेम्परेचर हाई हो गया है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लेना हो तो लो है? नहीं तो मत आना। क्यों? मन कैसा है, मन बुद्धि कैसा है, कौन सा गुण नहीं है, धीरज का गुण नहीं है। हमने क्या सोचा, पैसों से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अभी हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या चाहिए हमारे अंदर, धीरज का गुण चाहिए। अगर धीरज का गुण होता तो कैसे बात करते आप, तो किन चीजों से बचते। अब समझ लो वो तो बाहर गए, बाहर जाकर दूसरों को भी बताएंगे इनके दुकान में मत जाना, तो आपका कस्टमर भी गया और दूसरा रेप्यूटेशन भी खराब हुआ, भाई ना बहुत गुस्सा करता है, उसके शॉप में बिल्कुल नहीं जाना, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। तो आपके अर्थ सत्ता में बिजनेस में क्या हो रहा है, अवगुणों के कारण जो आप करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है। तो अगर हम गुणों की धारणा कर लें, वो गुणों की धारणा कैसे करनी है, वही तो स्वयं भगवान ज्ञान मुरली के द्वारा हमें बताते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, जैसे स्वच्छता के लिए स्नान का महत्व है, दर्दी के लिए दवाई का महत्व है, शरीर के लिए भोजन का महत्व है और आत्मा के लिए ज्ञान मुरली का महत्व है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर दिन ज्ञान मुरली का हमें श्रवण करना है तो क्या हो जाएगा, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज, फिर हमें कोई भी टेंशन नहीं होगा। और सब टेंशन्स को दूर करने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर समय भी दिया हुआ है। जैसे क्या कहते हैं डॉक्टर्स आजकल, अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो क्या, भोजन, नींद और एक्सरसाइज, तीनों अच्छे से अगर आप करोगे तो आप हेल्दी रह सकते हो, है ना। तो इसी तरह अगर आप मन को हेल्दी रखना चाहते हो, बुद्धि को चार्ज रखना चाहते हो, तो हर दिन स्वयं भगवान ने अपॉइंटमेंट दिया है, वो है अमृत वेले का समय। कौन सा समय है वो, 4 बजे का अमृत वेले का समय स्वयं भगवान ने अपॉइंटमेंट दिया है। तो अब सोचने की बात है, कभी कभी हम सबको पूछते हैं, भाई आपको रजाई चाहिए या राजाई, रजाई समझते हैं ना, जब ठंडी लगती है तो क्या करते हैं, रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। राजाई यानी मन पर राज करने वाले, वरदान प्राप्त करने का समय। तो आप में से जो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे तो रात भर नींद नहीं आता है, 4 बजे अच्छी नींद आती है दीदी, कोई बात नहीं, रजाई ठीक है, अगर जो कहते हैं हमें रजाई ठीक है, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाओ, अच्छा कोई नहीं है। अच्छा आप सब राजाई पसंद करते हैं, कौन कौन है जो कहते हैं हम राजाई पसंद करते हैं, वो हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए, अच्छा कुछ लोग है, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, माना उनको वो भी पसंद नहीं है, क्या समझे, समझ लो जो राजाई यानी मन पर राज करना चाहते हो, कम से कम जो राजाई चाहते हैं और राजा बनना चाहते हैं उनको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कम से कम आपने संकल्प तो किया है? तो अमृत वेले का समय किसने अपॉइंटमेंट दिया? किसने दिया? स्वयं भगवान ने। अगर समझ लो आज प्रधानमंत्री जी आपको मिले और टाइम दे दे, कम से कम रात को 12 बजे आ जाना, मैं तभी फ्री होता हूँ, तो जाओगे या नहीं जाओगे? सोचोगे चलो हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं? समझने की बात है। जो समझदार होगा वो क्या करेगा? रात को जरूर जाएगा। क्यों? किससे दोस्ती हो जाएगी? प्रधानमंत्री से हो जाएगी, तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स उसके हो गए ना, तो अच्छा है उससे दोस्ती करना। इस तरह अगर राजा ही करना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, तो भगवान का जो पहला श्रीमद है वो जो फॉलो करने का संकल्प करते हैं, तो 100% भगवान आपके सारे टेंशन्स की जिम्मेवारी ले लेंगे। आपको और क्या चाहिए? भगवान से दोस्ती हो जाएगी। भगवान से क्यों? जिसका कहना मानोगे उससे दोस्ती हो जाएगी। फिर सारे दिन में आपको एनर्जी मिल जाएगी। आपको पता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? दादी जानकी, जिसका आयु कितना है जानते हो ना? 102। तो आज इतना कुशल रूप से भारत के 8500 ब्रांचेस और 140 कंट्रीज से भी ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में ईश्वरीय सेवा चल रही है, कितना अच्छे से मैनेजमेंट चल रहा है, ये शक्ति कहां से मिल रही है? दादी जी कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करते। और उनको स्टेबल माइंड कहा गया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जब उन्हें टेस्ट किया गया, स्टेबल माइंड की उपाधि दी गई। तो हम जो चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हो, हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो, तो बुद्धि तो चार्ज्ड हो पहले। तो ये क्या हो गया? मन बुद्धि को जैसे आराम मिल गया। जैसे चाहे कितना भी काम हो, रात को तो सो गए ना, ऐसा तो नहीं कि रात को भी काम करना शुरू कर दोगे? नहीं, 2-3 दिन काम करोगे, थक जाओगे, बैटरी स्लो हो जाएगी, तो रात को तो आराम करोगे। तो कहाँ आराम करोगे? घर में जाकर या ऑफिस में? घर में जाकर। तो इस तरह समझ लो अमृत वेले में क्या करना है। मन को आराम देने के लिए मन को घर में ले जाना है, माना परम धाम में जाकर क्या करना है? बातें करनी है। इजी है ना? योग मुश्किल है या इजी है? इजी है। क्यों? क्या करना है योग में? बातें करनी है। और क्या करना है? किससे बात करनी है? ईश्वर से बातें करनी है। जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को लेने का दम रखता है, जो जिसमें सब ताकत है, उनसे बातें करनी है। तो ऐसा नहीं कि भाई वहीं बैठ जाना है, जहां सोते हैं वहीं पे बैठ जाना है, नहीं। फिर क्या होगा? आप सोच रहे हो, बहुत शांति का अनुभव कर रहे हो, फिर देखेंगे नींद कर लिया होगा आपने। लेकिन आपको क्या करना है? वहां से उठ के ब्रश करके मुंह धोकर दूसरी जगह बैठना है, क्योंकि किससे मुलाकात करने जा रहे हो? परमात्मा से। तो एक बार क्या हुआ, चर्च में प्रेयर पढ़ रहे थे पोप। तो जब वो प्रेयर पढ़ रहे थे ना, एक छोटा सा बच्चा वहां पर ही था, वो जाके खड़ा हो गया उधर। आधा घंटा प्रेयर चला, बच्चा भी कुछ कुछ बोलता रहा। तो पोप देखते रहे, ये क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कुछ तो बोल तो रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, क्या बोल रहा होगा। तो उनको ऐसा लगा, उमंग उत्साह आ गया, चलो इस बच्चे से पूछते हैं क्या किया। सब चले गए, पोप ने उस बच्चे को बुलाया, बोला अच्छा आप क्या कर रहे थे? तो बोला आप बताओ। आजकल के बच्चे तो कैसे होते हैं जानते हो ना, उन्होंने बताया आप बताओ आप क्या कर रहे थे। तो पोप ने कहा मैं तो प्रेयर पढ़ रहा था। तो बच्चे ने कहा मैं भी तो वही कर रहा था। तो बोला अच्छा प्रेयर में क्या बोल रहे थे बच्चे? तो बच्चे ने कहा आप बताइए आप क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने दिखाया, देखो इस बाइबल में जो भी बातें हैं वही तो मैं पढ़ रहा था, पोएम पढ़ रहा था। अच्छा तो आप बताइए आप क्या कर रहे थे? बच्चे ने बहुत प्यार से कहा मैं तो एबीसीडी बोल रहा था। तो बोला हाँ पोप ने कहा क्या एबीसीडी कोई बोलते हैं? तो बोला बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बच्चे ने कहा आप एबीसीडी को वर्ड बनाकर सेंटेंस बनाकर पैराग्राफ बनाकर मेहनत करके बोल रहे थे, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा था। तो आप बताओ भगवान किसे प्यार करेंगे? दोनों को करेंगे, लेकिन ज्यादा प्यार किसे करेंगे? जो दिल की बातें हैं अमृत वेले में उठकर, उठना तो हो गया मना मन बुद्धि को आराम मिल गया, और सुबह क्या करना है अमृत वेले में, करना क्या है? बातें करनी है। अब जैसे देखो आप मॉर्निंग जो भी आए थे यहाँ पर, तो सब बैठे थे तो कमेंट्री बजती है, तो मना कमेंट्री में क्या बताया जाता है, कैसे बात करनी है, कैसे बात करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मना ऐसे ही करनी है, दिल की सारी बातें आप भगवान से कर सकते हैं। जैसे समझ लो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, जिसको आप जानते भी नहीं हो उससे बातें तो कर लोगे ना, जब तक सफर पूरा नहीं होगा तब तक आपकी बातें भी पूरी नहीं होगी, चाहे तो नंबर भी ले लेंगे, चलो और आगे बात करेंगे। तो इस तरह भगवान को याद करना, कैसे याद करना, उसके लिए कोई डेफिनेशंस नहीं है। जैसे बच्चा क्या कर रहा था, एबीसीडी बोल रहा था, इस तरह आपके दिल की हर बात आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, वो सुन भी लेंगे और आपको ऐसा अनुभव होगा कि स्वयं भगवान मुझे मदद कर रहा है। तो इसलिए मन को क्या करानी है, एक्सरसाइज करानी है। कब कराएंगे एक्सरसाइज, जानते हैं ना कब करना है एक्सरसाइज? सुबह सुबह, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो ना। अगर समझ लो कोई हार्ट पेशेंट है, अगर वो कहे भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहे मैं रोज आपको वॉकिंग करना है, सब सुन लिया, उसके बाद कहे भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है वॉक करने का, तो डॉक्टर क्या कहेगा, फिर जाके मरो, मेरे पास क्यों आए तो एक दिन मेहनत करनी है, बाद में वॉकिंग करने के बिना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो फिर अभी क्या कई बार क्या कहते हैं, शिव बाबा को भी यही टाइम मिला था क्या 4 बजे का, और कोई टाइम दे देते हैं? लेकिन वो टाइम कैसे सत्व प्रधान है, कैसे मोहब्बत से उस टाइम में जब हम बैठेंगे परमात्मा के साथ दिल से बैठेंगे तो हमारी सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं, ये भगवान की तरफ से गारंटी है। इसलिए बताओ आप में से जो आज से संकल्प करते हैं, हम कभी आज से संकल्प करते हैं आज से हम अमृत वेला करेंगे, वो हाथ उठाइए जरा मुस्कुराते हुए। हाँ संकल्प तो किया, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ज्ञान मुरली में ये रहस्य परमात्मा ने बताया, हर रोज अमृत वेला करोगे, अमृत पीने का समय है सुबह का 4 बजे। कई बार क्या होता है ना, जब हम नहीं बताते हैं, कई बार शाम को लोग उठ जाते हैं 4 बजे, कहते हैं आपने तो थोड़ी बताया था सुबह का, 4 तो शाम को भी बजता है, इसलिए आपको क्लियर रहे सुबह का 4 बजे का समय स्वयं भगवान ने हमें अपॉइंटमेंट दी है। तो उसमें करना क्या है, मन को एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी दिल की सारी बातें आपको करनी है। तो ये रहस्य कहाँ बताया, ज्ञान मुरली में बाबा ने हमें बताया। तो इस तरह आपने देखा होगा, सुना भी है कि कैसे स्लाइड्स के माध्यम से पिताश्री ब्रह्मा बाबा का अपना आपने सुना, कैसे 1937 से लेकर 69 तक स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के माध्यम से जो महावाक्य उच्चारण किए उसे कहा जाता है साकार मुरली। तो मुरली में बाबा ने हर चीज की श्रीमत दी है, जैसे अभी अभी हमने बताया आपको कैसे अमृत वेला हर रोज करनी है, करने से मन को बुद्धि को ताकत मिलती है, अमृत पीने से कहते हैं ना अमर बन जाते हैं, अमर माना ऐसे नहीं कि कभी मरेंगे नहीं, सारे दिन में एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, ये सारे गुण अपने आती जाएगी, क्यों शक्ति है ना, कनेक्शन हो गया ना, इसलिए। तो 1937 से जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से लेकर 69 तक जो महावाक्य स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के माध्यम से उच्चारित किए, उसे कहते हैं ज्ञान मुरली। तो इस ज्ञान मुरली में चार सब्जेक्ट्स पर परमात्मा ने बताया। एक है ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा है राजयोग, तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा और फोर्थ है ईश्वरीय सेवा। तो समान रूप से बताया साकार मुरली में, जिसे बेसिक कोर्स कहा जाता है, जो सारे सेवा केंद्रों पर एक ही मुरली चलती है, इन मुरलियों की ये विशेषता है। तो जैसे एक व्यक्ति को दाल रोटी सब्जी चावल मिल जाए तो तृप्त हो जाए, तो इस तरह जब हम साकार मुरली सुनते हैं जो स्वयं भगवान ने सुनाया है, हर बात का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। कैसे हमें रहना है जीवन में, कैसे हमें अपने क्षेत्र में नंबर वन बनना है, ये सारी बातें ज्ञान मुरली के द्वारा स्वयं भगवान हमें बताते हैं। लेकिन उसे सुनने की विधि भी है, ऐसे नहीं है कि चलो हमने सुन लिया कैसे भी, तो धारणा नहीं होगी। मुरली सुनते समय मैं आत्मा इन कानों से स्वयं भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। जैसे सूरजमुखी फूल हमेशा सूर्य के तरफ केंद्रित रहता है, इसी तरह हमें भी अपने मन बुद्धि को, मैं आत्मा स्वयं बाप दादा को देख रही हूँ। पिता शिव बाबा, दादा यानी बड़े भाई, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, बाप दादा दोनों मेरे सामने बैठे हैं। निमित्त जो टीचर है उनके शरीर को न देख, उनके ब्रुकुटी में। इसलिए अमृत वेले में भी हम बारंबार आपको कहते हैं कि जागृत अवस्था में बैठो, तपस्वी बहने बैठी हैं उनके ब्रुकुटी में देखो, केवल शरीर को नहीं देखो, शरीर में ब्रुकुटी के मध्य में आपका ध्यान हो। और देखना भी है तो ऐसा आप महसूस करें कि स्वयं बाप दादा यानी स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर आपके समक्ष आए हैं। इस विधि से आपको मुरली सुनना है। थोड़ा सा आपको बताएंगे मुरली कैसे होती है। तो बाबा कहते हैं मुरली में, कहते हैं मीठे बच्चे, महसूस करें कि मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ, स्वयं भगवान मेरे सामने बैठे हैं और वो मुझे कह रहे हैं मीठे बच्चे। महसूस कीजिए सभी, जैसे आप अपने बच्चों को उठाकर प्यार करते हो, इस तरह स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है। मुझे पढ़ाने हेतु परम धाम से उस महाज्योति का अवतरण इस धरा पर हो रहा है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर दोनों मेरे समक्ष अंतरिक्ष से परम धाम से उतर रहे हैं और मैं आत्मा इन कानों से उनके महावाक्य सुन रही हूँ। स्वयं भगवान प्यार का सागर मुझे प्यार देने हेतु पधारे हैं। अहो मेरा सौभाग्य। महसूस करें, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है ना, बाबा पूछ रहे हैं, खुशी से मुस्कुराते हुए मुरली सुनना है और महसूस भी करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे कौन है, आपके पिता कौन है? बाबा कहते हैं जैसे बाबा प्यार का सागर है ना, आप अपने बच्चों को कहते हो ना, आपके बाबा देखो इंजीनियर है, आपके बाबा देखो जज है, कहते हो ना, अपना परिचय देते हो, इस तरह स्वयं प्यार का सागर कह रहा है, देखो मैं आपका पिता हूँ तो मैं कैसा हूँ, प्यार का सागर हूँ। बच्चे, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, मेरे जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्यों? अभी इस पर हमें क्या करना है, विचार सागर मंथन करना है। अच्छा, बाबा जैसा प्यार कोई क्यों नहीं कर सकता, उस पर सोचना है। क्योंकि सोचने की शक्ति तो हरेक में है ना। जैसे एक बार एक माता अपनी बच्ची को लेकर गई तीर्थ यात्रा पर, और जब तीर्थ यात्रा पर लेकर गई, उनको उन्होंने कहा कि देखो तीर्थ यात्रा पर आई हो और कुछ ना कुछ दान देना होता है। अच्छा, तो क्या ध्यान देना है? तो फिर उन्होंने कहा बहुत चॉकलेट खाती हो, चॉकलेट दान में दे दो। तो बच्ची ने कहा रुकिए मैं सोचकर बताती हूँ। सोचकर क्या बताया, हा? मुझे पढ़ाई से टेंशन होता है, पढ़ाई दान में दे दूं? तो कहने का भाव क्या, बुद्धि है ना, बुद्धि उसे कहाँ यूज करना है, हम कहाँ यूज करते हैं, जिससे हम थक जाते हैं, मन थक जाता है, बुद्धि भी थक जाती है। क्योंकि व्यर्थ बातों में, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, यह है जैसे ऐसा भोजन, अशुद्ध भोजन जिससे मन खराब हो जाता है। तो अब ऐसे भोजन हमें देना है मन को, कैसा? अच्छा, प्यार का सागर, स्वयं ईश्वर मुझे प्यार करने आए हैं, बुद्धि से दिल से स्वीकार करना है। और जो स्वीकार कर लेता है उसे कभी डिप्रेशन की बीमारी नहीं आएगी, ये गारंटी है 100%। क्यों? भगवान के प्यार को स्वीकार कर लिया। क्या एक है सुनना केवल, लेकिन क्या करना दूसरी बात, दिल से स्वीकार करना, हाँ बाबा आप आए हो, प्यार के सागर हो आप, मुझे कोई प्यार दे ना दे मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ, क्यों आप मेरे साथ हैं। जैसे आजकल बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं, माँ बाप ये मेरे ध्यान रखेंगे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, रखे ना रखे कोई गारंटी है, पता नहीं है। लेकिन आप हमेशा दाता बनकर देते रहे, आप हमेशा देते रहो, तो भगवान आपकी जिम्मेवारी ले लेगा, ये गारंटी। तो इस पर विचार करो, केवल सुनना नहीं है मुरली को। अच्छा, बाबा ने मुरली के माध्यम से यकीन दिलाया मैं आपके साथ हूं, मुझे याद करो। स्मृति से शक्ति कैसे आती है, समझ लो एक व्यक्ति है बेड पर लेटा हुआ है, चल भी नहीं सकता है, उसको जीने की बड़ा तमन्ना है, तो उसे जाकर कह दो तुम्हारे बेड के नीचे बॉम्ब है, तो अगला मिनट कहाँ मिलेगा, वो शायद बाहर भी चले जाएंगे चलकर, लेकिन आप अंदर रहेंगे। क्यों, शक्ति कहाँ से आ गई, स्मृति, मुझे जीना है चाहे कुछ भी हो जाए, ऑक्सीजन चल रहा है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन सडनली कैसे शक्ति आ गई, स्मृति। तो इस तरह स्मृति लानी है, स्वयं भगवान मुरली में मुझे मीठा बच्चा कहता है, और प्यार का सागर मुझे प्यार देने आया है, मेरे साथ कौन है, स्वयं ईश्वर है। अगर ये बात याद रही तो विजय आपके जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएगा। अगर स्मृति रही तो मेरे साथ कौन है, स्वयं ईश्वर है, वो मुझे प्यार करता है, चाहे कोई करे ना करे, वो तो सर्वशक्तिवान है। इस पर बुद्धि चलानी है, मुरली सुनने के बाद बुद्धि चलानी है, तब बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। और बाबा क्या कहते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। ऐसे तो मुरली 45 मिनट्स में पूरी हो जाती है, ऐसे नहीं कि मतलब दीदी सब समझाएगी, लेकिन अब सुनने के बाद आपको क्या करना है, बुद्धि में विचार सागर मंथन करना है, रिवाइज करना है। अच्छा, क्या कैसे अप्लाई करना है इसको, इसके बारे में सोचना है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे क्या करो, बाप समान बन जाओ। बाबा तो प्यार का सागर है, लेकिन आपको क्या करना है, क्या करना है, प्यार करना है। एक बार दादी जी से किसी ने पूछा, दादी मुझे भी दादी बनना है, मतलब बहुत इजी है, क्या बोला दादी ने, गिव लव टेक लव, गिव पीस टेक पीस, गिव हैप्पीनेस टेक हैप्पीनेस, सिंपल। तो घर में अगर हम झगड़ा नहीं चाहते हैं तो क्या करो? प्यार करो। तो कैसे प्यार करो? ये भी प्यार स्वरूप आत्मा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी अपने परिवार का है। कैसे देखो? कैसे देखो? आत्मिक स्मृति में देखो। तो क्या होगा? आज रियलाइज करेगा बच्चा भी, हाँ मैंने क्या क्या किया, फिर भी मम्मी ने कभी गुस्सा नहीं किया। एक बार ऐसे सत्संग में बैठे थे और जैसे सुनकर चले जाते घर पर, तो मम्मी ने डायरी में लिख दिया, आज से मैं जोर से नहीं बोलूंगी। हाँ, बाबा ने कहा प्यार का सागर बनो, मेरे समान बनो, उन्होंने नोट कर दिया और वो घर चली गई। घर चली गई, उसके बाद समझ लो 15 दिन हो गया, तो उनको याद आया, डायरी में देखूं क्या क्या और लिखा है। तो 15 दिन तक ये ध्यान रखा कि मुझे प्यार से बोलना है, और बाबा ने कहा है कि दिल से प्यार करना है, यानी आत्मा को देखना है। तो 15 दिन तक वो बच्चे से बहुत अच्छा व्यवहार करती रही, तो बच्चा भी बहुत खुश। तो 15 दिन के बाद जब उन्होंने डायरी खोली, डायरी अंडरलाइन किया हुआ था रेड पेन से, तो बच्चे ने देखा ये मैंने तो नहीं किया है, किसने किया? तो बच्चे ने, मतलब जो किया था मम्मी ने, समझा ये बच्चे ने ही किया होगा क्योंकि मेरे साथ तो बच्चा ही था। फिर उसके बाद 20 दिन के बाद वो आकर के बच्चा पूछता है, मम्मी आप मेरे लिए समय निकालोगे? इतना प्यार से, रेस्पेक्ट से। तो जब बोला कि क्यों नहीं, मेरा सारा समय तो आपके लिए है, तो बोला ठीक है, तो आप जोर से तो नहीं बोलोगी ना, प्यार से बोलोगे ना, जैसे अभी तक आप बोल रहे थे, उस दिन आपने डायरी में भी लिखा था, बच्चे ने पूछा। हाँ बेटा बिल्कुल, आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। तो जब सब कुछ पूछ लिया बच्चे ने कहा कि मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो सच्चाई सामने कब आई? जब प्यार से व्यवहार किया। तो प्यार से व्यवहार करने से, सच्चा बोलने से, तो हम जो चाहते हैं परिवर्तन हो जाए वो बहुत सहज रूप से हो सकता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे किसी को रंज मत करो, किसी को नाराज नहीं करो। तो आज से आप में से कौन ऐसा समझते हैं, हम आज से कभी गुस्सा नहीं करेंगे, जरा मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। अच्छा, बाकी सबका दूसरा प्लान है, चलो देख लेते हैं क्या होता है। हा? तो गुस्सा करने से, देखो सोचो, गुस्सा करने से सबसे पहला गिफ्ट बीमारी का आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। क्यों? सबसे पहला असर गुस्से का शरीर पर होता है। तो कौन है ऐसी महान आत्मा जो गिफ्ट में बीमारी लेना चाहते हैं? तो आप ये सोचो कि भगवान ने ये रहस्य क्यों बताया कि बच्चे शांति से रहो, शांति से बताओ जो भी आपको बताना है, कभी भी नाराज मत हो। नाराज कब होते हैं? जब समझते हैं कि मुझे क्यों बोल रहे हैं, मना स्वीकार कर लिया। समझ लो आप टीवी देख रहे हैं, उस समय रावण का चित्र आ गया टीवी में, तो क्या करोगे? टीवी तोड़ दोगे? चलो तोड़ो, रावण आया, क्या करोगे? औरों को भी बुलाओगे, आ जाओ भाई आप भी आकर के देखना क्या चल रहा है टीवी में। रावण आ गया जिसके 10 सिर है, लेकिन 2 ही हाथ और 2 ही पैर है, सिर्फ 10 है। ऐसा कोई आदमी को आपने कभी देखा? बच्चों को भी बताओगे, देखो देखो रावण को, गुस्से से तो तोड़ोगे तो नहीं। और भी बुलाओगे सबको, क्यों, क्या समझ रहे हो? ये तो ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जब घर जाओ, कोई गुस्सा कर रहा है उस समय क्या समझो? ड्रामा में क्या चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है? जो गुस्सा कर रहा है कौन सा पार्ट कर रहे हैं अभी? रावण का, कह मत देना उसे। अगर कह दोगे तो पता है ना क्या होगा। हाँ, उनकी तो आउट ऑफ कंट्रोल में गाड़ी है, आपकी भी हो जाएगी। तो अभी बाबा क्या कहते बच्चे, ड्रामा है बच्चों, हर कोई अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा तो कहेंगे इतना, लेकिन उस पर हमें क्या करना है, विचार सागर मंथन करना है। अच्छा, ये तो केवल केल ही तो है, चलो अभी अभी ये रावण का रोल बजा रहा है, को थोड़े समय के बाद जब शांत हो जाएगा तो अच्छा रोल बजाएगा। अंदर से तो समझ सकते हो, प्यार से व्यवहार कर सकते हो ना। तो एक एक महावाक्य में रहस्य भरा हुआ है, वो विचार सागर मंथन करते रहना है। तो बाबा प्रश्न पूछते हैं मुरली में, बच्चे किस प्रकार के विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जैसे आप अपने बच्चों को पूछते हो ना, अच्छा क्या बनना चाहते हो ताकि आप खुश रहो, बताओ तो सही। इस तरह बाबा भी पूछते हैं, बच्चे कौन से विचार चलने चाहिए जिससे खुशी का पारा चढ़ेगा, तो कौन से विचार करेंगे। बाबा कहते हैं, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। क्या संकल्प करना है, ज्ञान रत्नों से स्वयं भगवान पिता बनकर मुझे भरपूर करने आए हैं। तो ऐसा सोचते रहेंगे तो क्या होगा, आपको कभी भी दुख नहीं हो सकती। कभी कभी आपने देखा भी होगा अदृश्य रूप में माँ बाप बनकर स्वयं भगवान ने कैसे मदद किया। आप में से भी कुछ होंगे जिन्होंने ऐसा अनुभव किया होगा, है ना। तो स्वयं भगवान मात पिता बन गया। एक बार जब सपने में एक व्यक्ति देख रहे थे कि कैसे भगवान मात पिता के रूप में पालना दे रहे हैं, उसका साक्षात्कार उन्होंने सपने में किया कि समुद्र के तट पर चलते जा रहे थे और उन्होंने देखा कुछ निशान थे वहां पे। तो पहले देखा चार पैरों के निशान हैं और आगे चलते हुए देखा दो पैरों के निशान हैं। तो सपने में वो दिल ही दिल में भगवान से बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने भगवान को माँ बाप बनाया। तो उनको पूछा, हे भगवान, मैंने आपको हमेशा माँ बाप समझा, अब मैंने देखा चार पैरों के निशान मेरे जीवन में कब थे, माना वो मेरा सुख का समय था, उस समय आप मेरे साथ थे। लेकिन जब दो पैरों के निशान देखे, वो समय को जब मैंने देखा तो उस समय मेरे जीवन में दुख था, ये दो पैरों के निशान थे, क्या आपने मुझे मदद नहीं किया। जब भगवान से ऐसे पूछा तो भगवान ने कहा, बच्चे जब आप बहुत सुखी थे ना तो मैं आपके हाथ पकड़कर आपको चला रहा था, तो जब आप बहुत दुखी हो गए ना, आप चल नहीं पा रहे थे, तो मैं आपको गोदी में उठाकर चल रहा था, और दो पैरों के निशान मेरे हैं। तो हमेशा भगवान ने हमें मदद किया है और करते रहेंगे, उनके श्रीमत पर चलेंगे। कहते हैं सदा विनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरो बुद्धि की, और विचार करो कि हमारा जब हम स्वर्ग में जाएंगे, सत्युग में सोने के महल होंगे, वहां तो होंगे ही सत्युग में, लेकिन हमारा मन बुद्धि दिल कैसे बन जाएगा, सोने का हो जाएगा। जिस समय हमारे अंदर गुण और शक्तियां आ जाएगी तो अंदर कैसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा कि अभी और रहना है और अच्छे से। कई बार क्या होता है, घर में झगड़ा चलता रहे तो कहेंगे भाई कब जा रहे हो, अगर बहुत प्यार से कोई बात करे भाई रह जाओ ना और दो दिन। तो इस तरह स्वयं भगवान कह रहे ज्ञान रत्नों में रमण करते रहो तो आपका दिल जो है स्वर्ग जैसा बन जाएगा, मन मंदिर बन जाएगा। तो एक एक बात पर आपको विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। कई बार हम कहते हैं ना, भाई हम इस कुल के हैं, कहां से आए हैं, ऐसे खुद को समझते भी हैं, दूसरों को बताते भी हैं। तो बाबा ने मुरली में क्या कहा, बच्चे कौन से कुल के हो, ब्राह्मण कुल के हो। अगर हमें ये याद रहेगा तो चाहे कोई कितना भी ग्लानि कर रहा है, उस समय हमें क्या होगा, को कोई बात नहीं, मैं तो ब्राह्मण कुल का हूं ना, तो मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने आप आ जाएगा। क्यों? अगर स्मृति रही मैं कौन से कुल का हूं तो बाबा ने क्या कहा मुरली में, आपके कुल को याद करो बच्चे, आप कौन से कुल के हो। तो इस तरह बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सदा याद रखो कौन है मेरे साथ, स्वयं भगवान मेरे जीवन साथी है। अगर ये आप याद रख लेंगे तो कभी भी असफल नहीं होंगे और 100% सफलता गारंटी है। लेकिन स्मृति रखनी है, कौन सी स्मृति, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो बाबा हर बात को मुरली के द्वारा बताते हैं। तो जब 45 मिनट मुरली पूरी हो जाती है, अंत में बाबा और भी प्यार करते हैं, बच्चे अगर किसको दुख दिया, रंज किया तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए कभी दुख नहीं देना बच्चे, कभी किसी को क्या नहीं देना, दुख नहीं देना। तो हम सोचते हैं अच्छा बोल से तो बोलेंगे ना, गलत गलत तो सब सुन लेंगे, मन से सोच लेंगे तो क्या हुआ, तो क्या होगा, मन से सोच लिया तो कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन किसको मिलती है, शरीर को। इसीलिए ये रहस्य भगवान ने बताया कि बच्चे कभी भी गुस्सा नहीं करो, कभी भी आप दूसरों के बारे में गलत मत सोचो, आपको क्या करना है, कैसे देखना है, हर एक को हर एक की विशेषता देखनी है। घर में भी जाओ, बच्चे मिलते हैं उनको भी क्या कहो, आप भी बहुत विशेष आत्मा हो, उनकी विशेषता देखते हुए उनको अंदर से प्यार करेंगे ना, तो बच्चों में भी परिवर्तन बहुत सहज रूप से मिल सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई बाबा आपको समझाते हैं, क्या समझाते हैं, देखो कितना प्यार कर रहे हैं बाबा। बाबा क्या कहते हैं, सुख दो तो सुखी होंगे, सब प्यार करेंगे, तो मन से भी सुख देना है हमेशा। मन की क्या कैपेसिटी है, एक मिनट में 25 से 30 विचार, आत्मा में इतनी शक्ति है, एक मिनट में 25 से 30 विचार की रचना हम कर सकते हैं। तो क्वालिटी क्या है, कैसा है, प्यार भरा हुआ है, अभी हमें चेक करना है। हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं तो कैसे हमारे हरेक विचार श्रेष्ठ होना चाहिए, इस पर आपको सोचना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, एक संकल्प करते हो ना, चेक करो क्या ये मैं सुख स्वरूप आत्मा ऐसे सोच सकती हूँ, ईश्वर की मैं हूँ तो क्या मैं ऐसा सोचकर बोल सकती हूँ, पहले चेक करो फिर बोलो, तो कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, बाबा भी प्यार का सागर है ना, देखो कितना प्यार किया बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये तो हमने सैंपल के रूप में आपको बताया, एक एक महावाक्य को हमें क्या करना है, विचार करना है। 45 मिनट्स में मुरली पूरी हो जाती है, उसके बाद में हमें होमवर्क करना है। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सभी प्यार से बोलिए, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो स्वयं भगवान हमें नमस्ते करते हैं, मीठे मीठे सिकील दे बच्चे, गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, मुरली के द्वारा प्यार देते हैं। तो आप फील कर रहे हो ना कैसे मुरली के द्वारा स्वयं भगवान प्यार करता है। बाबा क्या कहते हैं, धारणा के लिए दो बातें, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करो। जैसे अभी यहाँ से सुन के गए, बाहर जाएंगे समझ लो कोई बात आ गई, तो उस समय किसी ने कुछ और कह दिया, तो उस समय उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास न करते हुए क्या करना है, अच्छा बाबा ने मुझे क्या कहा, कोई बात नहीं उन्होंने ऐसे किया, लेकिन मुझे कैसे करना है। तो हर बात को चेक करते रहना है मुरली के साथ में। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल जाओ और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सब सीधे बैठ जाएं और बिल्कुल अशरीरी बन जाएं। मैं आत्मा इस देह में मेहमान हूं, महान हूं। तो ऐसे एक एक बात का अभ्यास करना है, जैसे जो अच्छा लगा ना, एक सेकंड के लिए भी अगर आपने ये सोचा कि मैं अशरीरी आत्मा हूं तो क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी। तो बाबा क्या कहते हैं, अभ्यास करो बार बार, अशरीरी हूं, इस शरीर में रहती हूं लेकिन मैं मेहमान हूं, अभ्यास करो। इस तरह बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, ऐसा नहीं चलो भगवान मेरे सिर पे हाथ रख दो, नहीं। बाबा क्या कहते हैं, सोचो आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। अगर हम सही बातों का चॉइस करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, शक्तियों को धारण करते हैं, तो हम मित्र बन जाएंगे। अगर विकारों के वश कोई कर्म करते हैं तो हमने खुद को श्रापित कर लिया। तो भगवान कहते हैं आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने आप को वरदान दे सकते हो। देखो इतना सुंदर ज्ञान है। तो अपने ही आप मित्र हो, अपने ही आप शत्रु हो। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे स्वयं को पवित्र बनाना है। कैसे बनाना है स्वयं को, पवित्र, प्योर। थिंकिंग भी प्योर हो तो फीलिंग भी प्योर होगी, फीलिंग प्योर होगी इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगी, फिर आपका परसेप्शन वैसा बनेगा और जैसा परसेप्शन बनेगा वैसे आपके बोल होंगे, वैसे आपके हैबिट्स होंगे, वैसी आपकी पर्सनालिटी बनेगी। देखो इस पर चिंतन करो, एक सोच आपको पर्सनालिटी बनाने में सहयोग देती है। अगर अच्छी सोच आपने कर ली तो आपकी पर्सनालिटी कौन सी हो गई, अरे बहुत अच्छी है, बहुत शांत रहती है, देवी जैसी है। बहुत गुस्से वाली संकल्प करते हैं हम तो कौन सी पर्सनैलिटी, गुस्से की। तो परमात्मा क्या कहते हैं, बच्चे पवित्र बनाओ, सोच बोल कर्म चेक करो, ऐसा है, विचार करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी को दुख नहीं देना, और वरदान जैसे हर मुरली में बाबा वरदान देते हैं, तो अभी आप सब वरदान लेंगे ना, तो फिर से आप देखिए कैसे मैं आत्मा इन आंखों से स्वयं भगवान को देख रही हूँ, स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा है। मैं आत्मा अपने लाइट के बॉडी में अपने आप को देख रही हूँ, कैसे मुझ आत्मा की लाइट पूरे शरीर में फैला हुआ है। मन बुद्धि से फरिश्ते बनकर बाबा के सामने आकर बाबा से वरदान ले रही हूँ, स्वयं भगवान ने उनका वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखा है और बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे निर्बल आत्माओं को भी सहयोग देने वाले, वरदान देने वाले वरदानी मूरत हो, महसूस करें स्वयं भगवान ने सर पर अपना वरदानी हस्त रखकर वरदान दे रहे हैं, सफील करें मैं वरदानी मूरत हूं, भगवान स्वयं वरदान दे रहे हैं। फरिश्ते रूप में आकर वरदान लेकर वापस फिर से अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और अंतर मन से स्वीकार करो, मैं ही वरदानी आत्मा हूं, स्वयं भगवान मेरे साथ है। वरदान को स्वीकार करना है और उसके बाद वरदान का एक्सप्लेनेशन होता है। तो बाबा कहते हैं आप जब किसी को हिम्मत देते हो तो शक्तिशाली बन जाते हैं, इसलिए बच्चे अपनी शक्ति से हिम्मत की टांग दो। किसी को भी क्या करो, जब भी वो आपके पास आए क्या करो, उन्हें हिम्मत दिलाओ, तो आप वरदानी मूरत बन जाएंगे। तो इस पर विचार करना है सारे दिन में। अच्छा, जब कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आई होगी जब बिल्कुल आप होपलेस हो गए होंगे, लेकिन अभी बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे हिम्मत रखो, स्वयं भी हिम्मत रखो, दूसरों को भी हिम्मत दो। क्यों, ईश्वर आपके साथ है, स्वयं भगवान आपके साथ है। अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो तो वो मेरा हो जाएगा। तो इस मुरली में बाबा स्लोगन भी बताते हैं, बच्चे अपने परिवर्तन के द्वारा संबंध, संपर्क और बोल में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त हो। तो जब हम अपने परिवर्तन से, कई बार क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, फिर घर जाके अगर गुस्सा करते हैं तो क्या बोलते हैं, अच्छा आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर आते हो लेकिन परिवर्तन तो हुए नहीं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे भले ज्ञान बाद में सुनाओ लेकिन अपने परिवर्तन से, अपने जीवन से संबंध, संपर्क और बोल में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त हो। आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, लोग आपसे मिलने आएंगे, कहेंगे ये तो बहुत हमेशा हमें बहुत सुख देते हैं, है ना। तो इस तरह आपने थोड़ा सा सुना कैसे साकार मुरली होती है। तो 69 के बाद जो बाबा ने संपूर्ण ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हुए आज भी हृदय मोहिनी दादी जी के तन के द्वारा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आज भी हमें ये अव्यक्त पालना देते हैं। तो 69 के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने अपना ये स्थूल देह छोड़ दिया, परफेक्ट बन गए, एंजल बन गए, तो उसके बाद से जो मुरलियां चली उसे अव्यक्त मुरली कहा जाता है। संडे के दिन इसे सेंटर पर पढ़ी जाती है। तो संडे के दिन क्यों पढ़ी जाती है, क्योंकि इन मुरलियों की विशेषता है योग और धारणा के सब्जेक्ट्स पर आप देखेंगे ज्यादा बाबा ने इन मुरलियों में बताया है। तो हम भी जब इन मुरलियों को सुनेंगे तो ऐसा अनुभव होगा कितना गहराई है और नई बातें, नई प्लान्स, नई डायमेंशंस आपको मिलेंगी जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में जाकर नंबर वन बन सकते हैं। थोड़ा सा आपको अव्यक्त मुरली सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी गुस्सा नहीं करना, कभी भी गुस्सा नहीं करना। बाबा कह रहे हैं, अच्छा गुस्सा करते हो तो लाल पीले हो जाते हो, देखो जैसे होमली टॉक होता है ना, बाबा ऐसे बात करते हैं। गुस्सा करना माना जैसे टॉम एंड जेरी का कार्टून शो हो गया, जैसे देखते ना कार्टून जैसे गुस्सा करना माना ऐसा हो गया जैसे कि आप उनके वश हो गए, टॉम एंड जेरी की तरह कर रहे हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी कार्टून नहीं बनना। हाँ, देखो दो लाइन आपको मैंने सुनाई, बाकी वैसे तो हर बात को जब आप सुनेंगे, समझेंगे, अव्यक्त मुरलियों के एक एक महावाक्य के रहस्य को जानेंगे, बहुत आनंद से भरपूर हो जाएंगे। जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हैं, इस तरह मुरलियों के द्वारा स्वयं भगवान हम आत्माओं से बात करते हैं। तो आप सभी जो आज से संकल्प करते हैं हम रोज मुरली सुनेंगे, वो हाथ उठाइए। तो स्वयं भगवान की पालना को स्वीकार कर रहे हो ना, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। क्या होता है जब आप हर नियम का पालन करोगे, अमृत वेला करोगे, हर रोज मुरली सुनोगे, शाम का भी आप योग करोगे, हर घंटे में 5 मिनट कनेक्शन जोड़ोगे भगवान से, तो आपके जीवन की जिम्मेवारी स्वयं भगवान उठा लेंगे और आपको कभी भी दुख का, अशांति का अनुभव नहीं होगा और आपका जीवन नो प्रॉब्लम वाला, टेंशन फ्री लाइफ आपका बन जाएगा, ये गारंटी है। तो आप मेहमान बनकर आए थे, महान बनकर जा रहे हो। हमारी दादियां हमेशा कहती हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हैप्पी जर्नी, गो सुन कम सुन। जा रहे हो किस लिए, और एक को संदेश देकर, पहले तो गेस्ट बनकर आए थे, अभी होस्ट बनकर जा रहे हो। सर्व शिक्षा अभियान चलती है ना, हर एक एक को ज्ञान देकर फिर औरों को भी लेकर आओगे। और हमारी दादियां हमेशा कहती है, गो सुन कम सुन, जा रहे हो आने के लिए, फिर से आपका अपना ही घर है, आप आते रहेंगे और बाबा से भी मिलते रहेंगे। आप सबने प्यार से सुना, तो प्यार से सुना है ना, तो इसे अपने जीवन में धारण करना है। तो जब आप सेंटर पर जाकर मुरली सुनेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वातावरण होगा, वहां पर माहौल ऐसी होगी, पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं वहां आकर योग करती हैं। चलो आपका योग नहीं भी लग रहा है तो वातावरण से आप चार्ज हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं भाई घर में बैठ के सुनना है, टीवी में देखना है या कोई क्लास सुनना है, नहीं, घर सेंटर पर जाकर सुनना है। तो क्या होगा, आपके योग में भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके बच्चे भी सोचेंगे, अच्छा मेरे मम्मी पापा सब रेडी हो गए सुबह सुबह, मुझे भी तैयार होना है, तो उनको उठाने की भी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। आप रेडी होंगे तो आपसे पहले वो रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह सभी आप ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर देवताएं बनने के लिए यहाँ पर पधारे हो, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी ने प्यार से सुना, स्वीकार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी सभी बैठेंगे और दिल से धन्यवाद देंगे परमात्मा को और संकल्प करेंगे, आज से प्यारे बाबा हम आपके श्रीमत पर जरूर चलेंगे। अभी सभी सीधे बैठ जाइए और संकल्प कीजिए।
सभी हो दुखी और सबका भला,
सभी हो सुखी और सबका भला,
सभी हो सुखी और सबका।